نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قرآنی صورتوں کا نظم جلی جس کو ہم انگلش میں کہیں گے فلو چارٹس آف دی قرآنک سوراز. اس سلسلے میں آج ہم سورۃ الانفال کریں گے. سب میرے ساتھ دہرائیں الانفال. یہ انفال تو نہیں ہے, انفال تو نہیں ہے. آپ اعراب لگائیں اپنے پاروں پہ اور یاد رکھیں کہ اس سفر کے دوران آپ کا گول کیا ہے. نمبر ایک, ساری صورتوں کے نام صحیح پروننسیشن سے لینے آ جائیں. دوسرا آپ کا اس سفر کا گول کیا ہے کہ ساری صورتوں کے نام بالترتیب یاد ہو جائیں. سب سے پہلے الفاتحہ, البقرہ, آل عمران, نساء, مائدہ, سورۃ مائدہ کے بعد الانعام, الاعراف اور آج ہے سورۃ انفال. تو ترتیب کے ساتھ صورت ہے آٹھ نمبر کی, جن کے اس بک کے پیج 131. ہمیشہ کی طرح سب سے پہلے ہم مائکرو سٹرکچر دیکھیں گے, یعنی جو ایک ترتیب کے ساتھ ربط ہے ان صورتوں میں. تو آپ دیکھیے 75 یعنی 75 آیتیں مدنی صورت ہے, پیراگراف اس کے آٹھ ہیں. اس سے پیچھے ہم نے کتنی مکی صورتیں پڑھی؟ دو مکی صورتیں پڑھی. کون سی پڑھی؟ یہ باتیں آپ کو زبانی آنی چاہیے, یہ کہنے سننے لیے بات ختم ہو گئی ہے. کون سی پڑھی؟ الانعام اور الاعراف. اس سے پیچھے مستقل صورتیں مدنی تھیں. کون سی تھی؟ بقرہ, آل عمران, سورۃ نساء, سورۃ مائدہ. ٹھیک ہے, فرق ہوتا ہے مزاج مکی مدنیوں کا, بہت فرق ہوتا ہے. جیسے آپ کا اور آپ کے شوہر کا مزاج فرق ہے, ہمیشہ ہی فرق رہا. 10 سال, 20-25 سال کے بعد بھی آپ کا خیال ہے کہ وہ آپ کے مزاج کے نہیں ہوئے, تو میں آپ کو ایک اطلاع دے دوں کہ اگلے 10 سال بعد بھی وہ آپ کے مزاج کے نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے, آپ کو اپنا مزاج درست کرنا پڑے گا. ہر بندے کا ایک اپنا شاکل ہے. بہرحال اس صورت کے آٹھ بڑے ٹاپک ہیں, یعنی آٹھ پیراگراف ہیں اس کے. دیکھیں گے اس کو. سب سے پہلے نمبر ایک سے چار, پہلی چار آیات تمہید ہیں, تمہیدی آیات اور مغفرت اور اس کے قریب کی بشارت ہے. کس چیز کی تمہید ہے؟ اس صورت کی تمہید ہے. ٹھیک ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے ان مسلمانوں کی بخشش اور ان کو رزق کریم دینے کا جو وعدہ کیا اس کا تذکرہ ہے. ٹھیک ہے, پھر آیت نمبر 5 سے 14, 5 to 14, کتنی آیتیں ہوں گی؟ سب بولے 9 آیتیں ہوں گی. اس میں جنگ بدر کا پس منظر اور مقاصد جنگ ہے. بہت اہم آیات ہے کہ اسلام میں جنگ کرنے, ہونے, کرنے, کرانے کے بارے میں صحیح کانسیپٹ کیا ہے. پھر تیسرا دیکھیے گا آیت 15 سے 28, 15 to 28 ہے. فرضیت جہاد اور سمع و اطاعت کی ہدایات ہے, یعنی جہاد فرض ہے, کب ہے, کیسے ہے, کن حالات میں, اور سننے والوں کو یعنی حکمران کی بات کو سن کر رعایا یعنی عام لوگ جو ہوتے ہیں وہ کیسے اس پہ سن کر ماننے والے بن جائیں, سوال جواب نہ کریں کہ اس کیوں, کیسے, ابھی کیوں اور یہ اور وہ, دس اینڈ دیٹ. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد چوتھا ٹاپک ہے آیت 29 سے 40 تک, قریش کے جرائم, جنگ کا جواز. یعنی ان 11 آیات میں قریش مکہ نے جو اللہ کے نبی اور صحابہ کے ساتھ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے تھے ان کا تذکرہ کیا گیا ہے, اور ساتھ ہی ساتھ جنگ کا جواز بتا دیا کہ جب اتنا پرسیکویشن ہو, جب اتنا لوگوں کو ستایا جائے تو کیا وہ اپنا دفاع نہیں کریں گے. ٹھیک ہے, پھر اسی طرح پانچواں ٹاپک دیکھیے 41 سے 47, 41 سے 47, 47 مال غنیمت اور احکام جنگ. مال غنیمت کیا, کیسے, کیوں اور جنگ کے احکامات ہیں. ٹھیک ہے, پھر چھٹا پیراگراف دیکھیے 48 سے 54, جنگ بدر میں ابلیس کا کردار, منافقین اور ابو جہل کا فرعونی رویہ. یاد رکھیے ہر دور میں نبی جو ہوتے ہیں ان کو کوئی نہ کوئی اوپوننٹ ملتا ہے. جیسے موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون ایک سخت قسم کا کردار ہے, اسی طرح سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو جہل تھا. تو یہ تقابل بھی آپ کو ان آیات میں ملے گا. تقریباً 6 آیات ہیں. پھر اس کے بعد دیکھیے 7واں ٹاپک ہے احکام سلو جنگ. احکام ہوتا ہے کہ احکام, احکام ہمارے اردو والوں نے عربی کے اندر ایک تیسرا کیا, ایک چوتھا شروع کر دیا. عربی لینگویج کے آ ای او, ہم نے کیا شروع کر دیا, اے. आधे से ज़्यादा लफ्ज़ हम ये बोलते हैं अखलाक है ना, अखलाक, एक कोई साउंड नहीं है। अगर आप सिर्फ ये कसूल याद रख लेना कि अरबी ज़ुबान में एक कोई साउंड नहीं है, चंद हालात में होती है मद लीन जा उसमें एक, लेकिन वो साफ दिख रहा होता है आ ई ऊ आई, तो आ है तो आह काम, या फिर ये अहकाम होगा या ओह काम होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या है, अहकाम, अहकाम है सुलह जंग 55 से 71 तक है। फिर इसी तरह 8वां पैराग्राफ आयत 72 से 75 अहतमामी आयात और मगफरत और रिज़्क़े करीम की बिशारत है, यानी ततिम्मा है, एंड है, कंक्लूजन है, और साथ ही साथ जिस बात पे सूरत शुरू हुई थी उसी बात पे सूरत को पूरा कर दिया गया कि अल्लाह ताला ने किस तरीके से रिज़्क़े करीम का वादा किया। अब ये आप 8 टॉपिक्स जमा कर लें तो इस सूरत का मरकज़ी मज़मून क्या बनता है, फ़लसफ़ा जिहाद, जिहाद के आदाब, तरगीब जिहाद, अहकाम सुलो जंग, क्या होता है लफ्ज़ अहकाम तो नहीं होगा, अहकाम सुलह जंग और फजाइले जिहाद की वजाहत। तो आप देख रहे हैं कि फिर इस पूरी सूरत का जो मेन थीम बन रहा है ना वो जिहाद बन रहा है। और जिहाद क्या है, ज़िरवतुल इस्लाम, सनामुल इस्लाम, और डिफरेंट इसके एंगल्स दिखाए गए हैं, यानी जिहाद इस्लाम का एक बहुत अहम रुकन है। लेकिन आज के दौर में कुछ अपनों की ना समझी, कुछ मुसलमानों की जज्बातियत और कुछ वाकई जो एक दुश्मनी है दिलों में उसकी वजह से ये लफ्ज़ नाकाबिले बयान कर दिया गया। ये लफ्ज़ बोलते हुए लोग डरते हैं और इसकी तावीलात करते हैं। तो हालांकि हमारा ईमान है जिहाद ना सिर्फ ये कि इस्लाम का हिस्सा है बल्कि हर दीन में जिहाद था, और जिहाद ख़त्म हो नहीं सकता क्योंकि दुनिया में नेकी की दावत देने के साथ साथ बुराई की दावत देने वाले नहीं ख़त्म हुए। तो लिहाजा इन सारी चीज़ों को पढ़ते वक्त जहन में रखिए, और हमें कभी भी कोई इस तरह का अंदाज़ नहीं इख्तियार करना चाहिए कि जिसको आप ये कहें कि हम मुदाफियत का अंदाज़ इख्तियार कर लें, डिफेंसिव वे नहीं है। यस है इस्लाम के अंदर जिहाद, आप मैं इसको रोक नहीं सकते। जब मुसलमान अपने दीन के अंदर कुछ चीज़ें जो हैं उस पे शर्मिंदा होने लगते हैं ना तो फिर दूसरों को भी मौका मिलता है। लोग तो अपनी जेलें ख़त्म नहीं करेंगे, लोगों के पास तो और भी बहुत कुछ है, लेकिन हमें इस्लाम के असल में अहकामात का पता नहीं होता। मेरा ईमान है इस चीज़ पे कि अगर आपने इस सूरत को एक स्ट्रेच में समझा और इसमें से जिहाद का आपकी नज़रों में कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इंशाल्लाह ताला आप इसके बाद शर्मिंदा नहीं होंगे, बल्कि आपका दिल चाहेगा कि अगर कभी मौका बने तो आप इस्लाम का सही नुक्ते नज़र जिहाद के मौजू पे जो है वो दूसरों के सामने रखें। तो बहुत सारे दूसरे और मज़ामीन की तरह जिहाद का मौजू भी मिस इंटरप्रेटेड है, उसकी गलत किस्म की तस्वीर कशी की गई, और माजरत के साथ कि उस तस्वीर कशी में बहुत सारा हाथ हम मुसलमानों का है। जब हम खुद दीन से दूर दुनिया की मोहब्बत से चूर हो जाते हैं तो फिर हम अपने दीन की ही बातें नहीं मान रहे होते तो फिर दूसरों को भी यही मौका देते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं, ये सूरत कब कहाँ नाजिल हुई, ज़माने नज़ूल और पस मंज़र। ज़माने नज़ूल क्या है, किस मौके पे ये सूरत रिवील हुई, किस टाइम पे, उस वक्त हालात क्या थे, और पस मंज़र क्या है, बैकग्राउंड क्या है। किसी सूरत की शान नज़ूल या उसका बैकग्राउंड जाने बगैर उसकी तफसीर करना, कराना, सुनना जुर्मे अकबर है मेरी नज़र में, क्योंकि हम कुरान का मिजाज समझ नहीं पाते। आज 2018 या 19 पे हम इसको अप्लाई करते हैं और बहुत सारी चीज़ों को समझ नहीं पाते तो फिर अपनी मर्ज़ी से कुछ ना कुछ कहते हैं, ठीक है। तो ये सूरत कब नाजिल हुई, जंगे बदर जो रमज़ान 2 हिजरी में वाक़ हुई उस दौर में ये सूरत नाजिल हुई थी। सूरत अनफाल एक मदनी सूरत है जो जंगे बदर के बाद गालिबन ज़ुल्क़ादा 2 हिजरी में नाजिल हुई। जंगे बदर से पहले सूरत तल्लाक़ और सूरत मोहम्मद नाजिल हुई थी। तो आपको इस 2-3 जुमलों से क्या पता चला कि हालात क्या थे उस वक्त। देखिए ना, आपको कोई कुछ कहता है, आके आपके बारे में कोई बात करता है तो आप कहते हैं हाँ आपको मेरे घर के हालात नहीं पता ना, कहाँ से निकल कर आई हूँ। बिल्कुल इसी तरह जब तक कोई आपके हालात नहीं जानता वो आपकी हालत का सही अंदाज़ा नहीं लगा सकता। तो जंग के दौर या जंग के बाद जो सूरत नाजिल हुई इसको जाने बगैर मैं और आप सूरत को भी नहीं जान सकते। कुछ बातें इसके मजमून में ऐड कर लीजिए जो बुक में नहीं है आपके सामने। पहली बात है कि इस सूरत में इस्लाम और कुफर की पहली जंग पर मुफस्सल तबसरा, यानी ये एक किस्म की कमेंट्री भी है। किस पे? गज़वे बदर पे। गज़वे बदर बड़ी अहम जंग थी, इसके ऊपर डिटेल से बात की गई है। क्यों? ताकि मुसलमानों का नुक्ता नज़र दुरुस्त हो जाए, ठीक है। और बास कहते हैं कि ये एक ही तकरीर में नाजिल हुई, लेकिन चूँकि बाज़ आयते जंगे बदर से मुतल्लिका है तो हो सकता है कि जंग के दौरान कभी हुई हो, कभी कहीं भी हो, लेकिन वाकई आप पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि आप उस जगह खड़े हैं। ये ऐसे नहीं लगता कि ये बिल्कुल इधर उधर की चीज़ है। अब सवाल पैदा होता है, चूँकि बात कर दी हमने कि सूरत में गज़वे बदर और जिहाद और बाकी चीज़ों से है, तो बजाय इसके कि हम एकदम सूरत अनफाल का किताबी रब देखें, चंद जुमले हम गज़वे बदर पे समझेंगे ताकि हम देखें कि आखिर वो हालात क्या थे। तो नबी सल्लम की दावत तकरीबन 13 साल से मक्का में जा रही थी, मक्का में मौजूद थे। इस वक्त आपकी हैसियत मान ली गई थी, आपको आला किरदार पाया गया, लोग गवाही देते थे कि आप सादिक और अमीन हैं, बुलंद सीरत हैं, आला ज़र्फ़ हैं। आप एक लीडर के तौर पे अपनी शख्सियत के तहत मनवा चुके थे, लोग देख चुके थे कि आप पूरी तरह से अल्लाह के काम में लग चुके हैं, यानी आपने इसको अपनी ज़िंदगी का मिशन बनाया। याद रखिए, लोग सिर्फ उस दाइये दीन पे ट्रस्ट करते हैं जिसके बारे में वो खुद देखते हैं कि इसने अपनी ज़िंदगी को किधर लगाया हुआ है। राह जाती बातों से फ़ायदा नहीं होता, लोग शक और डाउट में आ जाते हैं। शौक आज ये फरमा लें, कल आप कुछ और शौक करें, फिर 6 महीने आप गायब रहें, फिर आपके यहाँ अभी घर में शादी चल रही है, 2 माह नहीं, फिर 2 माह हाजिर हो जाएं। ऐसे लोगों पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। अगर आपने ज़िंदगी में कभी भी दीन का काम करना है ना, पहले अपना ये ट्रस्ट बनाएं। खुशी गम आंधी तूफान रात दिन सुबह शाम सफ़र हजर, लोग आपको एक ही तरफ जाता देखें। ठीक है, कभी आप भागेंगे, कभी आप हल्के हो जाएंगे, आप स्टक हो चुके हैं, आप भाग भाग के वो काम नहीं कर रहे, कभी कई कई दिन तक आप सिर्फ एक खामोशी के साथ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला देते हैं, लेकिन लोग आपको एक संजीदा इंसान समझेंगे। इसके बरक्स अपनी मर्ज़ी और अपने हालात के मुकल्लफ लोगों पे लोग ट्रस्ट नहीं करते। कल एक जुमला किसी भी एडमिन ने बोला, मेरा मतलब दिल कांप गया उनको, उन्होंने तो अपनी मोहब्बत में बोला होगा, उन्होंने कहा कि हम 10 बातें भी अपने क्लास में आके कहें, रिकॉर्डिंग भी सुनाते हैं, लेकिन आकर आप सिर्फ 2 जुमले भी क्लास में खुद बोल देते हैं तो उससे फ़र्क ज़्यादा पड़ता है। मैं कांप गई इसकी बात को सुन के, इससे भी कुछ ज़्यादा उन्होंने कहा। खुलासा उनका ये था कि आप 2 मिनट के लिए क्लास में आ जाएं सिर्फ, क्योंकि आप अपने मुंह से कोई बात कह देंगे तो लोग उसको सुनेंगे। तो मैं कांप गई इस बात पे। क्यों कांप गई कि आखिर क्या वजह, क्या है, फ़र्क क्या है? उस्ताद नहीं, सारे उस्ताद होते हैं माशाल्लाह। जो साथी आप देखिए इस वक्त भी जो आपकी दूसरी क्लास को हेल्प कर रहे हैं, क्या वो उनके टीचर नहीं है? क्या वो उनके लिए दुआएं लेने देने का जरिया नहीं बनेंगे? क्या वो उनको उसमें रिकैप्स और डिस्कशंस और उनका तर्जमा सुनने में मदद नहीं कर रहे? सब कुछ होता है, लेकिन मुझे जो चीज़ लगती है, बात जो बात इधर मेरे दिल में अल्लाह ने डाल दी है, आपकी डेडिकेशन आपकी बात में असर डालती है। ये तो लिख लें, आपके बच्चे भी आपकी वही बात मानेंगे जिस बात में आप जमे होंगे। आप बच्चों को सुबह कुछ कहें, कल कुछ, शाम को अगले दिन वो आपका कोई और अमल देख रहे हैं, वीकेंड पे आप कुछ और इंसान हैं, मेहमान आ जाएं तो आप और हैं, खुशी गम में और हैं, बच्चे आपकी बात नहीं मानेंगे। आपको खुद नहीं यकीन तो किसी को नहीं यकीन आएगा। जिसको कहते हैं कि किल्ला खुद ही ना ठुका हो तो किसको बांधेगा? आप अपनी इतनी कीमती भैंस एक छोटी सी स्टिक के साथ बांध आते हैं, क्यों? आपको कहता है कि ये किल्ला मजबूत है, और अगर पता चले कि ज़रा सी कोशिश से इसको उखाड़ लिया गया तो आप कम अज़ कम लाखों की भैंस नहीं बांधेंगे उधर। तो अपने आप को एक मज़बूत किला बनाए। नबी सल्लम की 13 साल ज़िंदगी में लोग ये देख चुके थे कि आप एक संजीदा इंसान हैं, लाव वाली, जज्बाती, इमोशनल। खुशी आई तो चहकने लगे, गम आया तो ऐसे मुरझा गए झाग की तरह, फारिग थे तो भाग रहे थे, मसरूफियत है तो गायब हो गए। ये लोग दीन के काम के नहीं होते, ये अपने नसीब का काम करेंगे चले जाएंगे, इंशाल्लाह अल्लाह इनको भी जन्नतें देगा, ये भी साबुल जमीन में आएंगे। लेकिन पूरी डेडिकेशन से अल्लाह के नबी और सहाबा वाली ज़िंदगी मेरा आपका गोल होना चाहिए। इनमें से इंशाल्लाह मुकर्रबीन हो गए और अल्लाह आपको मुझे इस रस्ते पर चला ले। बाकी कदरदानी तो उसने करनी है। गुनाहों भरे और हमारे आमाल नामे की स्याहियों के बावजूद अल्लाह ताला बास दफ़ा आपकी छोटी सी इस बात पे आपको बख्श देगा कि आप उसके मामले में संजीदा तो थे ना। गैर संजीदा इंसान अल्लाह को अच्छा नहीं लगता। खैर, रास्ते रोकने की कोशिश की गई, शुरू के 3 साल तो बिल्कुल ही लोगों ने कहा ऐसी सरफिरी बात है, ऐसे ही चंद लोगों के दिमाग में एक खुन्नस आ गया। लेकिन फिर उनको एहसास हुआ कि जो जाता है वो वापस नहीं आता, जो इधर गया है वो कभी पलटा नहीं है। तो बदगुमानियाँ फैला दी, प्रोपेगंडे। ये सीरत के सफ़र में आप अलग से भी सुने नहीं, मेरे गुमान में तो आपने सबने सीरत की है, लेकिन अगर किसी ने नहीं की तो बैठ के करें। तो ज़िंदगी में संजीदगी लाने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सुनना पड़ता है। किस्सा मुख्तसर, सारे ख़तरों को अल्लाह के नबी ने आहसन अंदाज में फेस किया, हर मुश्किल का मुकाबला तैयार किया, और सबसे बड़ी बात यह है कि अल्लाह के नबी ने इस दिमाग को गर्म नहीं किया। हम जब मुश्किल हालात में फंसते हैं, और हमारी मुश्किलें इतनी बड़ी नहीं है कि लोग हमारे रास्ते में कांटे बिछाएं और हमारे खिलाफ प्रोपेगंडे करें, हमारी तो यही बड़ी है ना, घर में मेहमान आ गए, हमारे घर में तो यही बहुत है ना कि मियाँ ख़र्चा नहीं दे रहे, हमारे तो ये भी हो सकता है ना कि हम पाकिस्तान जाना चाहते हैं और मियाँ कहते हैं अभी ना जाए, हमारे लिए तो ये भी बहुत सारी बातें हैं। अल्लाह के नबी ने अपना दिमाग कभी गर्म नहीं किया, दिमाग कभी गर्म नहीं किया। जो बंदा गरम बंदे के सामने ठंडा बन जाए उसको कोई कुछ नहीं कहता। मैं एक कहावत पढ़ रही थी, किसी ने भेजी कि एक शख्स एक अक्लमंद के पास, दानिश्वर के पास आया, कहने लगा मेरी बीवी अपना टेम्पर लूज़ कर देती है, गुस्से में फिर बहुत बोलती है, फिर उस दिन हमारा बहुत झगड़ा होता है, तो मुझे कोई तरीका बताओ कि हमारा झगड़ा ना हो। उसने कहा कि तुम ऐसा करो कि जब भी तुम्हारी बीवी का टेम्पर लूज़ हो, यानी उसको गुस्सा आने लग गया, तुम एक पानी का ग्लास लो और उसमें से एक घूंट भरो, लेकिन तुमने निगलना नहीं है, उसको मुंह में स्प्लैश करते रहो, जिसको आप और मैं गागल करना नहीं कहते, काफ़ी देर करते रहो, यहाँ तक कि तुम्हारी बीवी का टेम्पर लूज़ हो जाए, जब वो लूज़ हो जाए फिर सारा पानी पी लो ना। उसने कहा ठीक है। चंद दिन के बाद वो आदमी आया खुश बाश, कहने लगा आपने तो मुझे इतना कीमती नुस्खा दिया, आप ये बताएं कि ये क्या कमाल था, मुंह में पानी का गागल का रखना और ये वो। उसने कहा कमाल इस पानी में नहीं था, कमाल ये था कि पहले क्या होता था कि जब तेरी बीवी को गुस्सा आता था तो आगे से तू भी बोलता था, और उसके गुस्से को एक किस्म की हवा लगती थी, जलती पतीली का काम। अब चूंकि तुम आगे से बोल नहीं सकते थे क्योंकि तुम्हारे मुंह में पानी था, तो उसको मिला कोई ना आगे से तेल, तो वो ठंडी हो गई। तो जिंदगी का असूल है, एक बोले तुम बोलो, आप खूब बोलें, ये भी ना कहें कि आप खूब बोलें फिर और बोलेंगे, खामोश, केयरफुली, इग्नोर ग्रेसफुली, फील ही ना कराएं। क्या जरूरी है कि गाड़ी का आगे बोनट टकरा ही जाए फिर ही गाड़ी रोके? कई लोग यही करते हैं, अखीर जब हद हो जाती फिर कहते हैं अब मैं नहीं बोलूंगी या मैं नहीं बोलूंगा। आप 5 कदम पहले गाड़ी को ब्रेक लगा लें, अकलमंद ड्राइवर हर वक्त हादसे नहीं करते। तो जिंदगी के अंदर याद रखिए, आप हर मुश्किल, जिंदगी में क्या मुश्किल नहीं आया आप पे, लगे ना देख करके आप पे कोई मुश्किल आती, लोग आपको देख करके इन पे नहीं लगता कोई मुश्किल आई, इनको ज़िंदगी में कभी अल्लाह ने आजमाया ही नहीं। हालांकि याद रखिए अल्लाह का वादा है मसाइब खमसा का, वला नब्लुवन्नकुम बिश्शय मिन अलखौफ वल जूई व नक्स मिन अलमवाली वल अनफुस व बशिर साबिरीन। तो ये 5 मुसीबतों में से कोई एक मुसीबत तो आएगी मेरे आप पे, आपने मैंने उस वक्त दिखाना है। तो एक बात जो 13 साल के बाद प्रूफ्ड थी वो थी अल्लाह के नबी का किरदार, शख्सियत। दूसरी चीज़ जो मक्का वालों के लिए नाकाबिले बर्दाश्त थी वो क्या थी? कुरान की कशिश। इस दावत में ऐसी कशिश कि जो दिलों और दिमागों में सिरायत कर जाती है, जहालत और जाहिलियत और तासुबात के इस खिसार को तोड़ देती है। लोग बीवी बच्चे माँ बाप को छोड़कर इस शख्स के पीछे चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात उनके लिए जो गम था कि उनकी पुरानी जाहली किस्म की रख रखाव वाली ज़िंदगी टूट रही थी। शुरू में वो बहुत हल्का समझे, लेकिन बाद में उनको लगा इस शख्स की बात में वजन है, ये तो हमारे घरों को तोड़वा देगा, बच्चे जा रहे हैं, बीवियां जा रही हैं, मर्द किसी का जा रहा है, कोई रुकता ही नहीं है। तो दूसरी बात जिसका मक्का वालों को यकीन हो चुका था वो ये था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत सच्ची है और ये पैगाम दिलों पर असर रखता है। आज भी ये दो असूल इकट्ठे हो जाए ना, सच्चा कुरान दें लोगों को हदीस की रोशनी में, इधर उधर की हैंकी पैंकियाँ उतार के फेंक दें, और अपने अमल से दिखा दीजिए कि हम बामल इंसान हैं। ये दो चीज़ों का मुकाबला कोई मुखालफत नहीं कर सकती, बड़ी मुखालफतें की आंधियाँ चलेंगी लेकिन उठ जाएंगी। तो लिहाजा जब वहाँ पे ना हुआ तो एक तीसरी चीज़ मक्का वालों ने देख ली कि इन्होंने तो अब घर बार की भी परवाह छोड़ दी मक्का से हिजरत करके। हिजरत ने एक खंजर घोंप दिया था कह लीजिए मक्का वालों की कमर पे, कि अब ये इससे भी नहीं डरते, जैसे आप ये कहते हैं ना मैं घर ही छोड़ के जा रही हूँ, अल्लाह ना करे ऐसा वक्त आए, तो अगला समझ जाता है कि इसका मतलब कि या मेरे बस से बाहर हो रहा है का मामला। बिल्कुल इसी तरह जब सहाबा में से अक्सरियत जो उस वक्त मौजूद थी, जब उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी की कोशिशें, कुव्वतें, सरमाया ज़िंदगी तक छोड़कर कुर्बान करके जाना चाहा, हत्ता कि अजीज़ तरीन रिश्तेदारों को छोड़ा, हिजरत की राहें पढ़ें ज़रा, किसी की बीवी ले ली गई, किसी का बच्चा ले लिया गया, तो फिर उस वक्त उनको समझ आ गया कि अब इन लोगों का मुकाबला हम ऐसे नहीं कर सकते। और मदीना की तरफ से जो हवाएं चली, अल्लाह के नबी वहां गए जहां पे पहले से दीन के नाम पे जमे जमाए लोग यहूद के नाम पर मौजूद थे, तो अल्लाह के नबी सल्लम के लिए एक चैलेंज और खुल गया। चलिए ऐसा भी हो गया, मदीना पहुंच गए। अब वहां जाकर अल्लाह के नबी ने वो अमली तौर पे करके दिखाया जो मक्का में लग रहा था कि आप करेंगे, यानी पहले से मौजूद लोगों से रबते, यहूद की तरफ सुलह का हाथ, मीसाक़े मदीना, अख़ुव्वत, भाईचारा, मुसलमानों को किस तरह जोड़ के दिखाया, कैसे मदीना की छोटी सी कमज़ोर बस्ती पर बोझ ही नहीं पड़ने दिया मुहाजरीन का, वरना वो तड़प जाते कि देखे ना आपके घर में इतने मेहमान आ जाएं और सारे महीने का राशन आप 2 दिन में ख़त्म कर दें तो बाद में झगड़े ही होंगे। मदीना गरीब बस्ती थी, ये भी याद रखें, मक्का वाले सरदार थे, बड़े दौलतमंद, खाते पीते थे, मदीना तो एक कह लीजिए कि जमींदारों या फसलें उगाने वालों की बस्ती थी। किस्सा मुख्तसर ये था कि अल्लाह के नबी ने बोझ ना डाला और एक एक को एक एक साथ कर दिया, और एक के साथ तो एक चल ही जाता है, आपको अपने खाने में किसी एक को शामिल करना बड़े को मुश्किल है, बिल्कुल भी नहीं है। तो लिहाजा अल्लाह के नबी के ये सारे मामलात लोग आंखों से देख रहे थे, जिसके बाद अब मक्का वालों को अल्लाह के नबी के सामने कह लीजिए कि लगा कि अब हम इनके साथ वैसे नहीं चल सकते। हुआ क्या कि मुसलमान जब मक्का से वापस आए तो अपनी ज़मीनें, घर, जायदादें वहीं छोड़ आए थे, साथ तो नहीं ला सकते, उस पे मक्का के लोगों ने कब्ज़ा किया और उस माल में से कुछ चीज़ों को लेकर तिजारत का एक काफ़िला जो था वो मुल्क शाम की तरफ गया, रास्ते में मदीना आता था। जब दुश्मन को पता था कि मदीना से गुजरें तो खौफ तो था ना, क्योंकि देखे ना चोर कभी सामने से तो नहीं गुजरेगा चीज़ लेकर, उन्होंने रास्ता बदल लिया, काफ़िला गुजर गया। लेकिन जब वापसी का सफ़र शुरू हुआ तो उनके दिल में सेम खदशा मौजूद था। इस दफ़ा अल्लाह के नबी और सहाबा को पता चल गया कि ये काफ़िला यहाँ से गुजरेगा तो हम उसका रास्ता रोकेंगे। क्यों रोकेंगे भला, क्या अपना सामान उनसे ले लें? किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि इतनी बड़ी जंग होगी। ये हैं वो हालात जहाँ ये सूरत अब नजरों ने ली है। और मुसलमानों को अल्लाह के नबी ने एक सिंपल कॉल दी, कोई एग्जेजुरेशन नहीं, कोई फ़र्ज नहीं, कुछ नहीं, आपने कहा कि इस तरह एक काफ़िला तैयार कर दें, आप में से जो जा सके चला जाए। 313 लोग तैयार हो गए। अब यहाँ से ये भी पता चलता है कि हिजरत करके 100 कुछ आए थे, दूसरा साल है, यानी एक साल गुजर गया, दूसरा भी चल रहा है, तो कुछ तो न्यू मुस्लिम होंगे, बाकी मदीना के लोग थे। ये भी एक अल्लाह ताला की तरफ से था कि मुसलमानों को डबल कर दिया अल्लाह ने तकरीबन 1.5 साल के अंदर। तो उस मौके पे एक जंग हुई थी जो अनएक्सपेक्टेड थी, जिस जंग को आप कह सकते हैं कि गज़वा बदर का नाम, इसी सूरत में उसको फुरकान कहा गया, यौमुल फुरकान, हक और बातिल का फ़र्क करने वाली जंग थी। वो कहते हैं ना कि ये नसीब की बातें, जिसको मिल गया सो मिल गया, और वो लोग जिन्होंने बैत अकबा के मौके पे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों पे बैत किए हुए थे, उनको अमली मौका मिल गया था ये काम करने का। और बहुत खूबसूरत बातें, मेरा तो दिल कर रहा अब यही सुनाती रहूँ, लेकिन ये सब कुछ सीरत में जाके सुनिए। ये जो बातें मैंने की है, ये बहुत सारी इस तरह की बातें, आप जलियात नबूवत, रही को मख्तूम, किसी सेट में गज़वे बदर सुन लीजिए तो इंशाल्लाह आपको मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने इस सूरत को ऐसे मौके पे नाजिल किया, और जब मुसलमान गए, हथियार कोई नहीं, तलवारें टूटी हुई, मुकाबले पे दुश्मन, वो काफिला तो निकल गया बच के, लेकिन अबू जहल एक बहुत, जैसे कहें कि लैस काफले के साथ मौजूद था, जिसमें हथियार भी थे और सब कुछ भी था, और वहाँ पहुँच गए। और जिसके बाद फिर एक ऐसी जंग हुई कि जो ज़मीन ने ना देखी, आसमान ने ना देखी, मुसलमानों को कितना उसमें फ़ायदा हुआ। सबसे बड़ा फ़ायदा ये कि आपकी साख बन गई, जो गिरती हुई एक कमज़ोर सी कश्ती थी उसको सहारा मिल गया। लोगों ने इस मुसलमानों को एक फिर से ताकत समझा, उन्होंने कहा कि ये ऐसे लोग नहीं हैं कि मतलब ये कुछ कर नहीं सकते, पहले किया था अब दोबारा कर रहे हैं, याद रखिए, आपके अपने अंदर यकीन आ जाए ना, तो आप डोलती कश्तियों को भी दोबारा किनारे पे लाने में मददगार हो सकते हैं। तो बहरहाल, ऐसे हालात में वो जंग जो उसमें जो लोग गए उनकी शान बढ़ी है, बाद में जो लोग नहीं जा सके थे वो अफसोस किया करते थे, हसरत थी उनको, क्योंकि उस वक्त था ही नहीं पता। इससे पता चलता है नेकी कि किसी मौके को हल्का ना जाने, आपको नहीं पता कौन सी बात किधर है। वो मैं इसको ऐसे रिलेट करती हूँ कि बात तो रोज़ ही होती है, अल्लाह के हुक्म से किसी लेक्चर को अल्लाह बहुत कबूलियत दे देता है, कितने लोगों की हिदायत का ज़रिया बनता है और कितना उसका फीडबैक आता है। मैं खुद सोचती हूँ हर दिन, जब भी बात छोटी बड़ी करूँ, कि मुझे नहीं पता कि ये बात किसके दिल के अंदर हिदायत का कोई बीज डाल दे। तो हमेशा कोशिश करके अपने आप को रखिए और अल्लाह ताला से मदद मांगिए। और अगर आप चाहें तो इस औरत को और अच्छा समझना है तो घर जाकर गज़वे बदर का टॉपिक रही को मख्तूम से पढ़ लें, या तजलियात नबूवत से पढ़ने का मौका ना मिले तो कम अज़ कम सीरत के उस सेट में से, ऐप से जाकर या वेबसाइट से जाकर आप लोग सुन लीजिए। इंशाल्लाह ताला आपके लिए भी रिफ़्रेशिंग होगा जो लोग पहले सुन चुके हैं, और अगर किसी को भूला हुआ सबक था तो वो याद आ जाएगा। और एक काम करें, अगर आप हज और उमरे पे जाते हैं, अल्लाह आपको मुझे ले कर जाए बार बार, तो जो ज़ियारतों के नाम पे इधर उधर चीज़ें देखते हैं ना, उससे बेहतर है कि ये लाइवली मिसालें देखें। आज भी मैदान बदर दिखता है, आप जाइए ज़रा मदीना में, जब गए कुछ दिन गुजर के चले भी ज़्यारतें करें, जाएँ बदर के मैदान में, वहाँ खड़े होकर ज़रा उस नक्शे को देखें। आज वहाँ मस्जिद अरीश बन चुकी है जहाँ अल्लाह के नबी सल्लम खड़े रहे थे और आप काफ़िले को देख रहे थे। जिसने सीरत पढ़ी हो उसको तो आंखों से चलता फिरता मंजर नज़र आता है, और नहीं पढ़ी तो पढ़ लेंगे इंशाल्लाह, पढ़ के जाना है। और सहाबा ने वाकई इस जंग में जाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हौसले को भी बुलंद कर दिया था। तो मुसलमानों को तो नुकसान कम मिला, लेकिन कुफार का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, 70 बड़े बड़े सरदार मारे गए। आप ज़रा सोचें, आज भी खबर फैले बड़े नोन वेल नोन लीडर टाइप 70 सरदार मारे जाएं कुफार के, तो कमर ठुकती है ना। और इसके मुकाबले में रोब बहुत तारी हो गया था। तो लिहाजा सूरत अनफाल में अल्लाह ताला ने इन्हीं चीज़ों को रखा है। अब आइए थोड़ा सा इसका किताबी रब्त देख लेते हैं। सूरत अनफाल का किताबी रब्त, किताबी रब्त मीन पिछली और अगली सूरत से कंटिन्यूटी, चेन होती है ना, पहली और अगली चीज़ जुड़ी होती है ना। तो कुरान का एक सूरत के बाद दूसरी सूरत को पढ़ना और समझना ये भी बहुत ही अहम होता है। पिछली सूरत कौन सी थी बोलिए? सूरत अलराफ। सूरत अलराफ में मुजरिम कौमों के ख़िलाफ़ अल्लाह ताला के रास्त इकदाम हलाकत का जिक्र था, यानी डायरेक्ट एक्शन था अल्लाह ताला का। ये क्या मुश्किल जुमला आ गया? अल्लाह का डायरेक्ट एक्शन क्या था भाई? सूरत अराफ के एंड पे कौमों की हलाकत। कौम नूह ने जब हज़रत नूह की एक ना मानी तो अल्लाह ने डायरेक्ट एक्शन लिया, ये मुराद है। कभी कभी होता है ना, पहले छोटे छोटे कारिंदों को भेजा जाता है, ना माने लोग तो फिर खुद ऑर्डनर पहुंच जाता है, भाई सुनाओ बात करो इधर आओ क्या चाहते हो। अल्लाह सुबहान तआला अम्बिया कराम के ज़रिए से अपनी बातें मनवाता था, लेकिन इसके बाद अगर लोग नहीं मानते थे तो फिर अल्लाह ताला खुद एक्शन लेता था। ठीक है, इस सूरत अनफाल में मुसलमानों के जिहाद के ज़रिए, यानी बाय इनडायरेक्ट एक्शन, यानी बिल वास्ता तरीके से मुजरिम कौमों की बेखुनी मकसूद है, ताकि दुनिया से फसाद कबीर और फितनों का खात्मा हो जाए। आयत 62, हुवल्लज़ी अय्यदक बिनसरिही व बिलमोमिनीन। हुवल्लज़ी वही है जिसने अय्यदका मदद की आपकी, बिनसरिही आप अपनी मदद के साथ, व बिलमोमिनीन और मोमिनों की भी। अय्यदा कहते हैं हाथ देना, उर्दू में नहीं कहते ज़रा हाथ देना, हाथ देने से मराज है मदद कर देना। तो अल्लाह ने अपने नबी को मदद दी थी, आयत 62 में ये बात है। इसी तरह मुजरिमों को सज़ा देना भी मकसूद है, और जिहाद के ज़रिए मुसलमानों की आजमाइश भी मकसूद है। सूरत अनफाल के पहले पैराग्राफ और आखिरी पैराग्राफ दोनों में जिहाद के नतीजे में मग़फ़रत और इसके करीम यानी इज़्ज़त की रोटी की बिशारत है। जो कौमें जिहाद तर्क कर देती हैं इन्हें ज़िल्लत की रोटी दी जाती है। सूरत अनफाल में फ़लसफ़े जिहाद की वजाहत है, और अगली सूरत यानी सूरत तौबा में तीन गिरोहों के ख़िलाफ़ अमली जिहाद की हिदायत है। तो ख़ुलासा क्या बना? पिछली सूरत में अल्लाह ताला ने पिछली कौमों की डायरेक्ट हलाकत का तذکرہ किया, किसी पे तूफ़ान आ गए, किसी पे हवाएं चली और किसी पे कुछ और हुआ। इस सूरत में मक्का वालों की हलाकत जो किसी आसमानी आफत से नहीं हुई थी, बल्कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की تلواروں کے ساتھ اس کو کیا گیا تھا، تو لہٰذا اس صورت میں آپ کہہ لیجئے کہ یہ کام اللہ نے کر کے دکھا دیا۔ یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھیں، آج بہت سارے لوگ مسلمانوں کی اور خاص طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان جنگوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ بالفرض آپ تھوڑا سا واپس جائیں، 13 سال ہو گئے ایک شخص کو اللہ کی طرف بلاتے، وقت معاشرے کے رسم و رواج سے لڑتے لڑاتے نہیں مانے، ایک زلزلہ تھا اور مکہ کے سارے لوگ تہو بالا کر دیے جاتے، کوئی اس پہ اعتراض کر سکتا تھا؟ اور پچھلی قوموں کے ساتھ یہی ہوا، ہلاک ہو گئی ساری قومیں، صرف وہ چند گنتی کے 2, 4, 10 لوگ بچتے تھے جو کہ سچے ہوتے تھے۔ اب اگر اللہ یہ کرتا تو کیا ہوتا جو پہلے پچھلی قوموں کے ساتھ کیا؟ لیکن اس میں کیا ہوتا، بچے بھی جاتے، بوڑھے بھی جاتے، عورتیں بھی جاتی، سب جاتی۔ اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ یہ نہیں کیا۔ پھر وہ جملہ سوچ لے جو سبیل الجنہ میں کئی دفعہ میں نے بولا ہے کہ جو کام پچھلی قوموں پر آسمانی آفتوں کے ذریعے ہوا، وہ کام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کی تلواروں نے کیا۔ اللہ کے نبی کی جنگیں قریش مکہ پر اللہ کے عذاب کی قسطیں تھیں، جو اللہ نے 9-10 بڑی بڑی جنگوں اور اس کے علاوہ اور بہت سارے مارکوں کی صورت میں لڑی تھی۔ تو لہٰذا اس پہ کوئی اعتراض نہیں کر سکتا۔ اس سے فائدہ کیا ہوا؟ صرف وہ مارے گے جو میدان جنگ میں آئے۔ دیکھیں زلزلہ آئے گا تو گھر میں بیٹھے ہوئے بھی مریں گے، طوفان آئے گا تو بھی ایسے ہی ہوگا، لیکن اللہ کے نبی کے ذریعے صرف وہ لوگ ختم کیے گئے جو دل میں کفر اور عناد لے کر مسلمانوں کی طرف آئے تھے۔ ٹھیک ہے، پھر اسی طرح مجرموں کو سزا بھی دی گئی اور جہاد کے ذریعے مسلمانوں کی آزمائش تھی۔ یہ بھی ایک بڑی اہم بات ہے، پہلے نبیوں کے جو ساتھی ہوتے تھے نا، ان کو کہا جاتا تھا راتوں رات نکل جاؤ، عناصری بھی عبادی، میرے بندوں کو رات کو لے کر نکل جاؤ، آسان ہو گیا۔ یہاں کیا ہوا، اللہ نے مسلمانوں کو میدان جنگ میں کھڑا کر دیا۔ تو صحابہ کی آزمائش زیادہ تھی پچھلی قوموں کے نبیوں کے ساتھیوں کی آزمائش کی نسبت۔ چلیے اب یہ تو ہو گیا سورت انفال میں پچھلی کی صورت کے ساتھ رابطہ۔ اب دیکھیے کہ پہلا پیراگراف اور آخری دونوں میں جہاد کے بعد مغفرت اور اس کے کریم کی بات ہے۔ آج بھی یہی اللہ کا فیصلہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جب تم بیلوں کی دمیں تھام لو گے، یعنی مراد ہے کاروباروں میں لگ جاؤ گے، زمین بوسی میں لگ جاؤ گے، تو اللہ تم پر دشمنوں کو مسلط کر دے گا، اور پھر اس وقت ایک ہی راستہ ہوگا اس سے نکلنے کا، اور وہ اللہ کے راستے میں نکلنا ہوگا۔ آج ہم ذلت میں ہیں نا، ذلت کی روٹیاں کھا رہے ہیں نا، ایڈ بھی لیتے ہیں، ان کے پاؤں بھی چاٹتے ہیں، وہ ہم پہ پابندیاں بھی لگاتے ہیں، اپنے رولز بھی منواتے ہیں، اسلام کے بیسکس کو وہ ٹچ کرتے ہیں اور کسی مذہب کی باتوں پہ نہیں بات کرتے۔ وجہ، آج ہم اللہ کی طرف سے پکڑ میں، ترک جہاد کی وجہ سے۔ جس دن امت نے دوبارہ کھڑا ہونا ہے، اس دن ذلت عزت میں بدل جائے گی۔ اور اگلی سورت توبہ میں انشاءاللہ 3 گروہوں کے خلاف عملی جہاد کی باتیں جو کہ ہم سورت میں پڑھیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ ہمارے یہ نصیب میں ہو۔ جب بھی آپ کوئی کام کرنا سیکھنا شروع کرتے ہیں، اس کے بعد آپ اس کو اس کے حق کے ساتھ کریں۔